समाज निर्माण की प्रयोगशाला है परिवार। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबसे बड़ी संपदा है व्यक्तित्व। देवियों भाइयों,
व्यक्तित्व का विकास सद्गुणों के संवर्धन के ऊपर टिका हुआ है। सद्विचारों, सत्प्रवृत्तियों एवं सुसंस्कारों के संवर्धन के ऊपर टिका हुआ है। इन आधारों पर हर कोई अपना व्यक्तित्व वजनदार बना सकता है।
व्यक्तित्व ही वह संपदा है जिसके आधार पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन और सांसारिक जीवन में सफल होता है।
सफलता के लिए धन काफी नहीं है। सफलता के लिए दूसरों का सहयोग काफी नहीं है। सफलता के लिए साधन काफी नहीं है। यद्यपि इन चीजों की जरूरत तो है, लेकिन आदमी के पास जो सबसे बड़ा हथियार है, सबसे बड़ा जो वैभव है, वह आदमी का व्यक्तित्व है।
व्यक्तित्व को कैसे विकसित किया जाए?
सद्गुणों से, सत्प्रवृत्तियों से कैसे संपन्न किया जाए?
सबसे बड़ा यही एक प्रश्न है जिसका अगर कोई आदमी समाधान कर लेता है तो समझ लीजिए कि उसने भविष्य को उज्ज्वल बनाने की आधी मंजिल पार कर ली। मित्रों, व्यक्तित्व का विकास कैसे हो?
आइए जरा विचार करें। इसके लिए कोई ना कोई काम करने के लिए जगह होनी चाहिए ना?
प्रयोगशाला होनी चाहिए ना?
तैरने के लिए तालाब होना चाहिए ना? पढ़ने के लिए कोई विद्यालय होना चाहिए ना? कोई भी काम सीखने के लिए, कोई भी काम करने के लिए प्रयोगशाला की आवश्यकता पड़ती है। इसके बिना कोई बात सीखी नहीं जा सकती।
कोई चीज अभ्यास में कार्यक्षेत्र के बिना उतारी नहीं जा सकती। उसके लिए कार्यक्षेत्र कहाँ हो? व्यक्तित्व विकास की प्रयोगशाला है परिवार।
व्यक्तित्व का विकास करने के लिए स्वयं में चिंतन आवश्यक तो है, उपासना आवश्यक तो है, भावना आवश्यक तो है, पर एक क्रिया भी तो चाहिए। कर्म करने के लिए कोई जगह भी तो चाहिए।
अभ्यास करने के लिए कोई स्थान भी तो चाहिए। दौड़ने के लिए कोई जंगल भी तो चाहिए।
कुछ न काम करने के लिए जगह चाहिए।
व्यक्तित्व का विकास करने के लिए जिस जगह की आवश्यकता है उसका नाम है परिवार।
परिवार वह स्थान है जिसमें कि आदमी अपने सद्गुणों, सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास कर सकता है।
मित्रों, अगर परिवार न हो तब?
अकेला रहे तब?
तब अकेला आदमी बिल्कुल बेकार होगा।
अकेला आदमी कहीं जंगल में रहने लग जाए तो न बोलना सीख सकता है, न चलना फिरना सीख सकता है। वह कुछ नहीं सीख सकता।
उसके लिए सब बेकार हो जाएगा।
जंगल में जैसे दूसरे जानवर अकेले रहते हैं, ऐसे ही गूंगे बहरे की तरीके से, बंदर की तरीके से आदमी भी रहने लगेगा। आदमी के लिए काम करने के लिए चारों ओर समान प्रकार के लोगों का होना जरूरी है। परिवार उसी का नाम है जिसमें कई तरह के, कई स्तर के लोग रहते हैं। किस स्तर के लोगों की विचारणा कैसी होती है, आवश्यकताएं कैसी होती हैं, भावना कैसी होती है, उसके साथ में तालमेल बिठा करके अपनी समझदारी को बढ़ाने का मौका केवल कुटुंब के बीच ही मिलता है। इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा गया है और यह कहा गया है कि उसका विकास सिर्फ इस बात पर टिका हुआ है कि आदमी किन लोगों के साथ रहा। आदमी को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए किसी न किसी के साथ रहने की आवश्यकता पड़ती है। शारीरिक जिंदगी को पूरा करने के लिए भी आदमी ऐसे बंधनों से जकड़ा हुआ है कि अगर चाहे कि अकेला रहूंगा तो अकेले रहकर जीवन यापन मुश्किल है।
मित्रों,
अगर अकेला आदमी कमाने के लिए जाएगा तो घर के सामान का क्या होगा? कोई चोरी कर ले जाएगा तब? रखवाली के लिए तो कोई चाहिए ना? अगर बच्चे न पैदा करना हो तो अलग बात है, पर अगर बच्चे पैदा हुए हैं तो उनकी रखवाली के लिए उनका संरक्षक चाहिए ना? उनके लिए 24 घंटे के संरक्षक की आवश्यकता है। इसके लिए कौन आए और कहाँ से आए, यह सब उनकी धर्मपत्नी करती है। घर में उसकी सहायता के लिए एक बूढ़ी माँ होती है। पिताजी बूढ़े हो जाते हैं तो वे घर की देख खटाव भाल करते हैं। कई बच्चे आपस में सलाह मशविरा करते हैं।
इस तरीके से कुटुंब का, परिवार का सारा माहौल बन जाता है। बस परिवार के बीच में रहकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का मौका मिलता है।
बच्चे अपने ढंग से विकास करते हैं। बच्चों को हंसने के लिए, खेलने के लिए, कपड़े पहनने के बारे में, कपड़े धोने के बारे में, टट्टी पेशाब करने के बारे में बहुत सारी जानकारियां माँ की गोदी में बैठकर मिलती है।
सामाजिक विकास के लिए जरूरी है परिवार। मित्रों, अगर बच्चा अकेला हो तब?
तब वह गाय के बच्चे की तरीके से, बंदर के बच्चे की तरीके से अंगड़ रहेगा। परिवार के बीच रहकर बच्चों को विकास करने का मौका मिलता है।
औरों को भी मौका मिलता है। लड़कियां हैं, जब माँ बन जाती हैं तो उनको देख माइनस भाल करना आता है।
वह सब वे पहले से ही सीख जाती हैं। बचपन में वे अपनी सहेलियों से हंसी मजाक करती रहती थी, खाना खाया और खेलने लगी।
ज्ञान के लिए उनको भी तो मौका मिलता है।
पति के साथ व्यवहार किस तरीके से किया जाए, सास क्या होती है, देवर किसे कहते हैं, बच्चे किसे कहते हैं, अमुक बात कैसी होती है, मेहमान किसे कहते हैं, अतिथि घर में कैसे आते हैं, पैसे की देखभाल कैसे रखी जाती है,
घर और सामान की व्यवस्था को किस तरीके से रखा जाना चाहिए, वगैरह वगैरह।
यह सांसारिक ज्ञान महिलाओं को कुटुंब के बीच में ही रह करके मिलता है।
अगर उन्हें कुटुंब के बाहर रखा जाए तब,
अकेली रहें तब, केवल दफ्तर में जाया और होटल में खाने लगे तब, शादी न करें तब, ठीक है अपनी जीविका कमा सकती हैं, लेकिन उनको सांसारिक ज्ञान के संबंध में, अपना अनुभव विकसित करने के संबंध में कोई मौका ही नहीं मिलेगा। इसलिए महिलाओं से लेकर बूढ़ों तक के लिए, बच्चों तक के लिए, हरेक को अपने अपने ढंग से अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए कुटुंब एक बहुत अच्छा सा कारखाना है,
एक प्रयोगशाला है।
इस प्रयोगशाला में हम में से, हम और आप में से हरेक को रहना चाहिए।
मित्रों, अपना कुटुंब हो तो ठीक है,
अपना नहीं है, आपने बसाया नहीं है या बसाने का मन नहीं है तो दूसरों का कुटुंब सही।
कुटुंबों के बीच में तो रहना पड़ेगा।
अगर आप कुटुंब से अलग एकाकी रहने की इच्छा करते हैं, विचार करते हैं, तब आप गलती करते हैं। थोड़े समय के लिए कोई आदमी अपना बौद्धिक या भावनात्मक विकास करने के लिए, चिंतन करने के लिए सामयिक रूप से समय निकाल लें तो बात भिन्न है। कोई आदमी उपासना करने के लिए एकाकी गुफा में रहने लगे तो बात अलग है, यह अपवाद है। विशेष उद्देश्य के लिए यह किया जा सकता है, पर सामान्य जीवन के लिए यह उपयुक्त नहीं है। सामान्य जीवन में विकास करने के लिए आदमी को परिवार में रहना बहुत आवश्यक है।
परिवार से विलग मत होइए।
शादी नहीं करना चाहते हैं तो कोई हर्ज की बात नहीं है। आपके माता पिता हैं, बड़े भाई के बच्चे हैं, दूसरों के बच्चे हैं,
एक कुटुंब में रहिए ताकि आपके जीवन यापन करने के लिए सारी व्यवस्थाएं बन सकना संभव हो सके।
नहीं तो फिर आपको खाना पकाना पड़ेगा, बाजार से आटा खरीद कर लाना पड़ेगा,
आपको शाक भाजी बनानी पड़ेगी, बर्तन साफ करने पड़ेंगे,
आपको घर का हर काम करना पड़ेगा और घर का हर काम करने में जिंदगी के लिए हर दिन आपका इतना सारा समय खर्च हो जाएगा कि आपके लिए जीवन मुश्किल हो जाएगा।
मित्रों,
फिर आप थके हुए आएंगे और आकर के अपने हिस्से में सारी जिंदगी का काम करेंगे तो एक दायरे में सीमित होकर के रह जाएंगे। जैसे बंदर आदि प्राणी होते हैं, अपना पेट भरते हैं, मिल जाए तो खा लिया, नहीं तो मारे मारे इस डाल से उस डाल पर डोलते रहते हैं। या तो आप ऐसी जिंदगी जिए अथवा सभ्यता की जिंदगी जीना चाहते हैं तो परिवार के अलावा और कोई गुजारा नहीं है।
परिवार के महत्व को समझिए, परिवार की महत्ता को आप समझिए।
परिवार की आवश्यकता को समझने के बाद सबसे पहली बात यह समझिए कि इसमें शारीरिक जीवन यापन करने की सुविधा ही नहीं है, केवल कामवासना से लेकर के हंसने खेलने और नित्यकर्म के लिए सुविधाएं मिलने तक की बात नहीं है। मुख्य बात यह है कि इसमें व्यक्तित्व का विकास करने में, सद्गुणों की संपदा को विकसित करने में सबको मौका मिलता है, जिसमें आप भी शामिल हैं।
इसमें खासतौर से घर के मालिक को सबसे ज्यादा मौका मिलता है कि वह अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके,
जिसे वह नौकरी में रहकर नहीं कर सकता, दुकान पर रहकर नहीं कर सकता, खेती बाड़ी में रह करके नहीं कर सकता। वह सारे के गुणों को विकसित करने का मौका उसको अपने छोटे से कुटुंब में रहकर ही मिलता है।
मित्रों, जीवन साधना की धुरी कुटुंब ही है, इसलिए कुटुंब की महत्ता आप में से हरेक को समझनी चाहिए। हरेक को उसका प्रयोग इस तरीके से करना चाहिए कि आदमी के व्यक्तित्व का विकास हो।
इसमें आप भी शामिल हैं और आपके घर का हर सदस्य शामिल है। जिनको आप प्यार करते हैं, जिनको आप अपना मानते हैं, तो उनके व्यक्तित्व के विकास में मदद कीजिए। धन बढ़ाने से धन बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है, इस विषय पर मैं बहस नहीं करता। धन की आवश्यकता है कि नहीं, मैं बहस नहीं करता। धन कितना चाहिए और कितना नहीं चाहिए, यह तय करना आपका और दूसरों का काम है, हमारा नहीं। हम तो सिर्फ एक बात कहना चाहते हैं कि अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना है तो आपको कुटुंब के बीच में, परिवार के बीच में रहना चाहिए। चाहे वह आपका अपना बनाया हुआ हो, आपके पिताजी का बनाया हुआ हो, भाइयों का बनाया हुआ हो, पड़ोसियों का बनाया हुआ हो,
आपको किसी न कुटुंब का सदस्य होकर के रहना चाहिए।
अकेले रहने की बात, अलग जिंदगी जीने की बात, इकट्ठे रहने की बात, परिवार से दूर रहने की बात, समाज से विलग रहने की बात आपको नहीं सोचनी चाहिए।
मित्रों,
परिवार में रहकर भी एक कैदी की तरह से आप रहें तो यह उससे भी बुरी बात है। आप रोटी तो खा लें, परंतु अपने कुटुंबियों के बारे में यह ख्याल न करें कि इनका विकास कैसे होना चाहिए और इनके बारे में हमारे फर्ज और कर्तव्य क्या हैं, तो यह सबसे बुरी बात है। जब तक आप लोगों के बीच में दिलचस्पी लेना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आपके स्वयं के व्यक्तित्व का विकास भी संभव नहीं है।
आप गुफा में चले जाइए, जंगल में रहिए, जेलखाने में चले जाइए, कालकोठरी में बंद हो जाइए, फांसी घर में चले जाइए।
जहां भी रहिए अथवा कुटुंब में आप इस तरीके से रहिए जहां आपने खाना खा लिया, कपड़ा पहन लिया और चारपाई पर सो गए,
सवेरे उठकर बाहर चले गए।
घर में कौन रहते हैं, कौन नहीं रहते हैं, किसको किस चीज की जरूरत है, किसको किस चीज की आवश्यकता है,
किसकी भाव संवेदनाओं को ऊंचा उठाने में आपकी क्या जिम्मेदारी है।
अगर इसका ख्याल आप नहीं करते तो आपका घर रहना न बराबर है।
मैं चाहता हूं कि आप कुटुंबी होकर जिए, परिवार का होकर के जिए। पारिवारिकता का सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम। मित्रों, मैं चाहता हूं कि आप वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता से ओतप्रोत हों और आत्मवत सर्वभूतेषु के सिद्धांत को लागू करने के लिए दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करने के साथ साथ आप यह भी करें कि इस थ्योरी को प्रैक्टिस में लाएं।
प्रैक्टिस में लाने के लिए इससे बेहतरीन प्रयोगशाला शायद ही दुनिया में कोई हो, जैसे कि कुटुंब के रूप में हमको भगवान ने दिया है। यह क्या है कुटुंब, इसमें आप बहुत बड़े बड़े काम कर सकते हैं। आप अपने आप को लोक व्यवहार के बारे में जानकार बना सकते हैं। परिवार में कई तरह के लोग होते हैं। बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, बड़ों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, बराबर वालों के साथ आपका व्यवहार कैसा हो, मिल बांटकर खाने में कैसा आनंद आता है, इसको आप समझें। एक दूसरे के दैख और दर्द, सुख और सुविधाएं बांट लेने से कितना ज्यादा आदमी सुखी और समुन्नत रह सकता है, इसका आप प्रत्यक्ष अनुभव करना सीखें। यह सारी बातें कुटुंब में ही संभव है। कुटुंब में और क्या सीखा जा सकता है?
लोक व्यवहार, जिसको शिष्टाचार कहते हैं।
अनेक स्तर के लोगों के साथ में अनेक प्रकार के व्यवहार कैसे किए जा सकते हैं, इस बात को इस शो प्रयोगशाला में देख सकते हैं। बच्चों के साथ कैसे व्यवहार किया जाए, एक आंख प्यार की और एक आंख सुधार की, अर्थात बच्चे गड़बड़ी करते हैं तो उन्हें कैसे समझाया जाए और कैसे मनाया जाए, उनको धमकाना कैसे चाहिए और अपनी नाराजगी कैसे जाहिर करनी चाहिए, यह बातें आप कुटुंब में रहकर सीख सकते हैं और सारे कुटुंब को वे बातें सिखा सकते हैं जो मानवीय गुणों के साथ में संबद्ध हैं।
मित्रों,
आप घर के दायरे में रह करके बहुत से काम कर सकते हैं। समाज की सेवा तो करनी चाहिए, लेकिन आप यह विचार न करें कि कुटुंब में हमारा जो समय खर्च होता है उससे समाज की सेवा नहीं होती। सेवा कैसे नहीं हुई? आप नर रत्नों का उत्पादन घर की खदानों में कर सकते हैं। अगर आप अपने घर का वातावरण संस्कारी बना लें और सब लोगों को आरंभ से अंत तक शिष्टाचार और दूसरी मर्यादाओं का पालन करने के लिए शिक्षित करते रहें, तो आप विश्वास रखिए आपके घर के लोग स्वावलंबी बन सकते हैं, सुसंस्कारी बन सकते हैं। स्वावलंबी बनाना, सुसंस्कारी बनाना बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि घर का वातावरण कैसा है। यह स्कूलों में नहीं सिखाया जा सकता। इसको कोई आदमी उपदेशों के द्वारा किसी के गले नहीं उतार सकता।
इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि समूचे कुटुंब का एक खास तरह का वातावरण बनाया जाए और उसमें हर आदमी को ढाला जाए। वातावरण आदमी को ढालता है, आप यकीन रखिए।
परिवार में अच्छे संस्कार विकसित करें। इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि अपने घर के वातावरण में समझदारी, ईमानदारी और जिम्मेदारी का मादा हर सदस्य के भीतर पैदा कर सकते हैं,
ताकि वे खूबसूरती के लिहाज से भी, कपड़ों के लिहाज से भी, शिक्षा के लिहाज से भी, आजीविका के लिहाज से भी, बुद्धिमानी के लिहाज से भी सबसे ज्यादा वजनदार हों।
इसके लिए आप क्या काम करेंगे?
एक सुव्यवस्थित प्रशिक्षण तंत्र घर में रह करके ही आपको विकसित करना होगा। मैनेजमेंट सुव्यवस्था का प्रयोग विभाग घर से ताल्लुक रखता है। अगर एक बड़े राष्ट्र को आपके सुपुर्द किया जाए, अथवा एक कारखाने को सुपुर्द किया जाए,
अथवा एक शहर का मेयर आपको बना दिया जाए, तो आप क्या करेंगे? जिन गुणों की, जिस समझदारी की आवश्यकता है, उसका अभ्यास करने के लिए आपको अपने छोटे से कुटुंब में उन सारे के गुणों को, व्यवस्थाओं को सीखना चाहिए, स्वयं सीखना चाहिए और दूसरे सदस्यों को भी सिखाना चाहिए।
फाइनेंस मिनिस्ट्री आपके घर में है ना?
आप जो कमाते हैं और उसे बढ़ाते हैं, लेकिन उसे खर्च कैसे किया जाए, किन मदों में किया जाए, किन मदों में खर्च को रोका जाए और किन मदों में खर्च बढ़ाया जाए,
अर्थ संतुलन कैसे रखा जाए,
जो आप कमाते हैं उसी हिसाब से बजट कैसे बनाया जाए, यह पूरे का गणित और अर्थशास्त्र आपको घर के कुटुंब के दायरे में रह करके सीखने को मिल सकता है।
परिवार निर्माण से समाज निर्माण। मित्रों,
आप जो कमाते हैं उसको हिसाब से खर्च कीजिए, उस हिसाब में से कटौती कीजिए, जो चीज बढ़ानी है बढ़ाए, लेकिन बेकार कामों में जो पैसा खर्च हो जाता है उसकी रोकथाम कीजिए। इस तरीके से आप एक अच्छा अर्थशास्त्री बन सकते हैं।
अपने घर की व्यवस्था बना करके आप एक अच्छे समाजशास्त्री बन सकते हैं।
समाज में ढेरों की अच्छाइयां भी हैं और बुराइयां भी हैं। अच्छाइयों को किस तरीके से बढ़ाया जाना चाहिए, इसके लिए आपको पग पग पर मौके मिलते हैं। परिवार एक पूरा समाज है। समाज में अच्छे गुणों को बढ़ाया जाए। समाज में ढेरों कुरीतियां व्याप्त हैं। आपको इन्हें समाज में से निकालना है। इसके लिए आप समाज में कहां कहां जाएंगे, जरा बताए। किसके किसके पास जाएंगे और कौन कौन आपका कहना मानेगा,
आप बताइए।
फुर्सत तो मिलती नहीं है। आप अपने घर में वे सारे काम कर सकते हैं। मसलन सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का शुभारंभ आप अपने घर से कर सकते हैं। आपके यहाँ ढेरों कुरीतियां हैं।
नर और नारी एक समान का नारा आप बार बार दोहराते हैं ना? नर और नारी को समानता का दर्जा मिलना चाहिए।
इसका प्रयोग आप अपने घर में नहीं कर सकते क्या? आप चाहें तो कर सकते हैं, ताकि आपके घर की महिलाएं भी यह अनुभव करें कि वे उसी तरीके से सम्मानित सदस्य हैं। वे दूसरे दर्जे की नागरिक नहीं हैं, जैसे कि दूसरे समाज में माना जाता है। आप अपने घर की प्रयोगशाला में यह प्रयोग कर सकते हैं।
मित्रों,
इसी प्रकार से दूसरी कुरीतियां हैं, जैसे निकम में आदमियों को भिक्षा देने वाली बात हो, या सैनिटेशन की समस्या हो, स्वच्छता की समस्या हो, ये सारे की सारी समाज की समस्याएं हैं।
इसके लिए सारे देश में स्वच्छता का आंदोलन चलाना चाहिए।
इसकी शुरुआत आप अपने घर से करें।
इससे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, चौथे को प्रेरणा मिलेगी और सभी इसकी महत्ता को समझने लगेंगे। बहुत सी बातें हैं, जैसे कुपोषण, कुरीतियां, गरीबी आदि।
इनसे बचने के लिए आप एक वातावरण बना सकते हैं। आप गरीब हैं तो शाक सब्जी की नई पैदावार अपने घर में तैयार करके गृह उद्योग की परिवार में मनोवृत्ति पैदा कर सकते हैं।
इससे कुपोषण से भी बचा जा सकेगा और आर्थिक समस्या का भी सहज समाधान मिल जाएगा। सहकारिता का वातावरण बनाएं। मित्रों,
सारे संस्कारों को आप अपने घर में जितनी अच्छी तरह से कर पाएंगे, उतना शायद कोई और नहीं कर पाएगा। मिलजुलकर रहने की प्रवृत्ति एवं सहकारिता की प्रवृत्ति का अभिवर्धन आज के जमाने में बहुत जरूरी है।
हर आदमी को मिलजुलकर काम करना चाहिए।
आपके घर में मिलजुलकर काम करने की आदत नहीं है। घर की स्त्रियां अलग काम करती रहती हैं, मर्द अपना अलग काम करते रहते हैं। महिलाओं के काम में मर्दों का कोई सहयोग नहीं है। बच्चे अपना अलग खेलते रहते हैं। उनको अपने माँ बाप के कामों में हाथ बटाने का कोई सहयोग नहीं है। घर में बूढ़े माँ बाप हैं, दादा दादी हैं। उनको छोटे छोटे कामों के लिए दूसरों के सहायता की जरूरत पड़ती है। उठने बैठने, चलने फिरने में सहायता की जरूरत पड़ती है। पानी से लेकर चाय नाश्ते तक के बारे में जरूरत पड़ती है। नहाने धोने से लेकर कपड़े धोने, सुखाने तक के ढेरों काम ऐसे हैं जिसमें दूसरों के मदद की जरूरत पड़ती है। बड़ों को अपने बच्चों की मदद करनी चाहिए और बच्चों को अपने बड़ों की मदद करनी चाहिए। इस तरह से यदि घर में सहकारिता का वातावरण बनाया जाए, तो आप विश्वास रखिए कि जो आदमी आपके घर के मेंबर हैं, जब वे बड़े होंगे तो एक सहकारी व्यक्ति साबित होंगे। अपने कुटुंब में जब कभी रहेंगे तो सहकारिता का आनंद उठाएंगे और समाज में जहां भी उनका योगदान होगा, सहकारिता का वातावरण बना सकने में समर्थ बन रहे होंगे।
मित्रों,
ऐसी ढेरों की ढेरों चीजें हैं जो आप अपने कुटुंब में रह करके अपने दायरे में छो बातें पैदा करते हुए बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस दायरे का विस्तार जितनी अच्छी तरीके से कुटुंब में हो सकता है, वह और कहीं नहीं हो सकता। आप जो कमाते हैं, मिलजुल कर खाते हैं ना? हिल मिलकर खाते हैं ना?
कुटुंब न हो तब
मुश्किल है।
हिल मिलकर खाने का यह आध्यात्मिक साम्यवाद आप अपने घर से शुरू कर सकते हैं। जो आदमी ज्यादा कमाता है, वह ज्यादा खाएगा, नहीं, यह साम्यवादी सिद्धांतों के विरुद्ध है।
आप कुटुंब में रहते हैं, समर्थ हैं तो क्या, असमर्थ हैं तो क्या? संयुक्तता का मतलब ही यह होता है कि उस पर हरेक का हिस्सा है, हरेक का हक है।
उस पर आप हरेक का हक स्वीकार कीजिए। आप ज्यादा कमाते हैं तो आप ज्यादा खर्च मत कीजिए।
आप अपने हिस्से में ज्यादा पैसे मत लीजिए। आप केवल अपने खानपान पर खर्च करना चाहते हैं, लेकिन परिवार में बच्चों को स्कूल के लिए किताबों की कॉपी की कमी है। आप ऐसा क्यों करते हैं? आप सिगरेट पीना चाहते हैं, कोका कोला पीना चाहते हैं, इसलिए पीना चाहते हैं ना कि आप कमाकर लाते हैं और आपकी जेब में पैसा है और आपको खर्च करने से कोई रोक नहीं सकता।
मित्रों,
यह गलत बात है। किसी दबाव की वजह से अगर कोई रोक नहीं सकता, तो आपको ईमानदारी और शराफत सिखाई जाए, यह आवश्यक है। इसके लिए आप यह समझिए कि आपका कुटुंब एक बहुत ही अच्छा वातावरण प्रस्तुत करता है। वह आपको स्वयं समझदारी सिखाता है,
आपको ईमानदारी सिखाता है, जो आपको जिम्मेदारी सिखाता है। आप इसे न केवल स्वयं सीखें, वरन सारे घर को सिखाएं।
अगर आप ऐसा करने में समर्थ हो सके, तो आपका कुटुंब न केवल आपके लिए, बल्कि आपके घर में रहने वाले सभी सदस्यों के लिए सुख और शांति का आधार बनेगा। न केवल आपके घर में रहने वालों के लिए, वरन सारे समाज में उसकी ऐसी हवा फैलेगी जैसे कि चंदन के दरख्त से खुशबू अपने आप चारों ओर फैलती है और सारे वातावरण को अच्छा बना देती है।
अगर आपने अपने स्वभाव में सद्गुणों सुसंस्कारों को समाविष्ट कर लिया तो यकीन मानिए आप ऐसे ही सारे समाज को सुगंधित, सुविकसित और समुन्नत बनाने में समर्थ हो सकेंगे।
ऐसा ही है अपने परिवार के प्रति, कुटुंब के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह, जिससे आप में से हरेक को करना चाहिए।
आज की बात समाप्त। ओम शांति।